نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم سورة المائدہ آیت نمبر 51 سے 66 تک کریں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ ہم نے جب سے شروع کیا ہے تو بہت فائنل میسیجز ہمیں دیے جا رہے ہیں، فائنل باتیں کہی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور یہ قانون کے لحاظ سے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لحاظ سے سمجھ لیں فائنل سورہ ہے. اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی حکم چینج نہیں ہوا، کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ ایک لاسٹ چیز بتا دی گئی، لاسٹ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں. اسی لحاظ سے اس کو سمجھا کیجئے، پڑھا کیجئے. پچھلی دفعہ ہم نے بہت اہم چیزوں پہ بات کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. اور کیا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پچھلے انبیاء بھی کس کے تھرو فیصلے کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو کلام ہے اللہ کا، یہ صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے بہت بڑا کام ہے جو اس سے لیا جانا ضروری ہے، جو اس کا مقصد ہے، ڈائریکشن لینا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ آفا حکم الجاہلیت یا بہون، تو اس کا بھی ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا ہے کہ جاہلیت کی چیزیں کیا کیا ہیں جو آج بھی ہمارے اندر رائج ہیں، لیکن اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے. تو اب ہم وہ جاہلیت کی چیزوں کو چھوڑ دیں، نہ کہ ان کے ساتھ ہی چمٹے رہیں ہمیشہ. اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام میں احکامات دیے ہیں وہ کہیں بہتر ہیں اس سے جو آبا و اجداد اور انہوں نے بھی پرانے زمانوں پہ کلچرز اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر چلتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ وہ اسلام کے خلاف ہیں، تو ان چیزوں کو ہم چھوڑیں اور حوصلہ کریں ان کو چھوڑنے کا، یہ قدم اٹھائیں. یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑے. مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے لی ہوئی، جو ہمارے اندر نہیں ہیں اور ہم سب وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دھڑلے سے کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں کیا کریں، پھر ہم نے رہنا جو ہے، کیا کریں پھر ہم نے ان میں جینا جو ہے. تو یہ چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور اگر ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر ہم ان کے خلاف نہیں قدم اٹھائیں گے اور حوصلہ نہیں کریں گے تو کون حوصلہ کرے گا؟ تو یہ جو ہم نے پیچز لگائے ہوئے ہیں نا اپنے اندر، ہمارے دین میں بھی پیچز لگے ہوئے، جیسے کپڑے پیچز والے کوئی نہیں پہننا چاہتا، لیکن دین میں ہم نے پیچز لگائے ہوئے اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جو جاہلیت والے ہیں، تاکہ ہم ماڈرن کہلائیں، حالانکہ وہ جہالت کے کام ہیں. شادی بیاہوں پہ کتنے ہندوانہ رسمیں ہم نے اپنائی ہیں، پھر برادریوں پہ، زبانوں پہ فخر کرنا، یہ تو ہندوؤں کی چیز ہے، ان کے اندر ہوتے ہیں برہمن اور پتہ نہیں شودرے اور کیا کیا. تو یہ اگر ہم بھی برادریوں کے چکر میں دماغ آسمان پہ رکھیں کہ ہماری برادری سب سے اونچی اور باقی گھٹیا اور نیچے، ہم نے ان میں کیا فرق پھر رہا؟ اب کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ قبائل میں ہمیں اور یہ ڈفرینٹ زبانیں کیوں دی؟ صرف شناخت کے لیے. اسی طرح دوسروں کے تہواروں پہ مرے چلے جانا اور ان کو ہی بہت للچائی بھی نظروں سے دیکھنا کہ یہی اچھے ہیں اور ہمارے کیسے ہیں. پھر وراثت کی تقسیم میں بھی ان کے طریقوں کو کرنا جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں لیکن وراثت میں نہیں کوئی حصہ دیتے. زیب و زینت کی نمائش کرنا، औलाद को कत्ल करना, काहनों और नजूमियों के पास जाना, कोई फौत हो जाए तो फिर ये कैंडल लाइट जलाना। अब ये विजल एक नया शुरू हो गया, अब वो शुरू कर दिया। तो क्या इस्लाम ने आपको कोई तरीका नहीं दिया वा? क्या इस्लाम ने कुछ नहीं सिखाया वा कि हमें दूसरों की चीजें लेनी पड़ती हैं? तो आज भी हम देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या बात समझा रहे हैं और किस चीज को हमें लेकर चलना है। देखिए बात होती है दीन में, जब जिसका पेट भरा होता है ना, वो दूसरे के खाने की तरफ नहीं देखता। आप बहुत अच्छा, अगर आपको खाना मिला हुआ तो आप दूसरे की सूखी रोटियों को ललचाई भी नजरों से नहीं देखेंगे। आप दूसरे की सूखी रोटियां और उसका बासी खाना देख के तभी लालच करेंगे जिस वक्त आपका अपना पेट भूखा, जब आप खुद रजे हुए नहीं है। तो हमारा भी आज ये हाल हो गया है कि आज हमने अपने दीन को तो अपनाया नहीं, हम भूखों की तरह दूसरों की तरफ देखते हैं। उनके पास क्या है? बासी रोटियां, बासी खाने, यानी जो खुद बोसीदा हैं, जो खुद इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आती, तो हर कुछ अरसे के बाद नई चीज ले आते हैं। आप देखते हैं ना, एक फैशन भी एक नहीं रहता, एक होता है, फिर एक चीज का होता है, फिर वो आउटडेट हो जाता है, फिर दूसरा ले आते हैं। उनकी तो अकलें इतनी सी ही हैं बस। लेकिन हम चूंकि रजे हुए नहीं है, हमारे पेट भरे हुए नहीं है, हमने अपना जो हमें दिया गया है उससे खुद को फिलअप नहीं किया, इस वजह से हम ललचाई भी नजरें से देखते हैं इनको। हालांकि उनके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ हमें मिला है उसके मुकाबले में उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी वो फैसिनेट करता है। आज अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये देखते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के जब भी बात आएगी, ये है वो रिश्ता जो फर्श वालों को अर्श वाले से जोड़ देता है। ये है ईमान का रिश्ता कि हमने अल्लाह को माना हुआ है, तब वो हमें हमारे इस नाम से पुकारता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे मानने वालों, जिन्होंने मुझे मान लिया हुआ है, वो मेरी बात सुने। को दूसरे लोगों तो नहीं सुनते, वो तो उनके, जब उन्होंने अल्लाह को माना ही नहीं तो उनको कोई इंस्ट्रक्शन भी ऐसी नहीं। तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि तुम मानते हो, तो अब इसका जवाब दो, अब इसको ये बात सुनो अल्लाह की, क्योंकि तुम मानने वाले हो, तुमने ईमान का दावा किया है। और इसमें बहुत ही मोहब्बत है जब अल्लाह ताला ईमान वाले कह के हमें पुकारता है। ऐसे ही है जैसे आप अपने बच्चे को आवाज देते हैं, अली इधर आओ, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं, मेरे बेटे इधर आओ, बेटा इधर आ जाओ, तो किसमें क्या ज्यादा मोहब्बत है? हा? नाम लेने में या रिश्ते इनकी निस्बत से पुकारने में? रिश्ते की निस्बत से पुकारने में। तो हमें हमारे इस अल्लाह ताला के साथ जो रिश्ता है, ताल्लुक है ईमान का, कि हम अल्लाह को माने में, उस ईमान के रिश्ते से अल्लाह ने हमें पुकारा है। और रिश्ते से पुकार के फिर क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब आगे कोई बात, या तो हमें हुक्म दिया जाएगा या किसी चीज से मना किया जाएगा। तो यहां पे क्या है, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ अल यहूद व नसारा औलिया, यहूद और नसारा को औलिया। क्यों क्यों ना बनाए? ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गई फिर? हम क्यों ना उनको बनाए अपने दोस्त? बादुहुम औलिया उबाद, उनमें से बाज बाज के दोस्त हैं, वो आपस में एक हैं, तुम्हारे साथ नहीं है। देखिए अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दोस्तियां करने से, हम जहां मर्जी दोस्तियां करें नहीं करें, जो मर्जी करते फिरे, अल्लाह की खुदाई में उसकी बातचीत में क्या फर्क पड़ता है? इतना तो जर्रे के बराबर भी इंसान की कोई हैसियत नहीं है। वो किधर दोस्तियां करे ना करे, जाए जहां मर्जी, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, इंसान का अपना नुकसान होता है, अल्लाह ताला ने हर उस चीज से हमें मना किया जिसमें हमारे ईमान का नुकसान है, चाहे हमारी दुनिया का नुकसान हो चाहे आखरत का नुकसान हो, उससे मना फरमाया। तो यहां पे यहूदो नसारा से कौन सी दोस्ती से मना किया गया? वो दोस्ती जिसको विलायत कहते हैं, वो दोस्ती जिसको दिली दोस्ती कहते हैं। वैसे आप अगर किसी जगह पर रहते हैं, मिसाल के तौर पे आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हमारे एक तरफ हिंदू है, एक तरफ यहूदी है, एक तरफ ईसाई है, एक तरफ मुसलमान है, तो हम एक मिक्स सोसाइटी में रहते हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा कि मैं और आप ही कोई मिक्स सोसाइटी में रहने लगे, इससे पहले तो कभी ये हालात थे ही नहीं, तो हम कैसे रहे हमें तो समझ नहीं आती। नहीं, मदीना की सोसाइटी भी ऐसी ही थी, कई मुसलमान थे, कई मुशरिक भी थे, कई यहूदी भी थे, और तो और वहां पे तो मुनाफिक भी थे। तो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के साथ बात नहीं करते थे, क्या उनसे लेन देन नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, बिजनेस डीलिंग भी है, काम कारोबार भी है, बल्कि उधार का लेन देन भी है उनके साथ, लेकिन दिली दोस्ती नहीं है। और मैंने आपको जैसे कि बताया, वली का मतलब दिली दोस्त भी है और हुक्मरान या मुतसर्रिफ अपना, यानी ऐसा जो आप जिसको आप अपना हामी बनाए, पुश्त बना जिसको बनाए, हिमायती बनाए, वो भी मना है। और यानी कोई ऐसा काबिल इतमाद ओहदा, कोई ऐसा डेजिग्नेशन, कोई ऐसा मनसब उनको ना दो जिसमें के कोई आपके राज उन तक जाए। जैसे आपने फौज में कोई ओहदा दे दिया या कोई वजीर बना दिया उनको, आपको पता है कि हजरत उमर के दौर में वो जब हजरत अबू मूसा आशरी से मिले तो देखा कि उन्होंने अपना असिस्टेंट जो था ना, वो एक ईसाई को बनाया हुआ था, उन्होंने उनसे रोका और यही आयत तिलावत फरमाई। हालांकि वो तो उनके अंडर थे, कोई हुक्मरान नहीं थे, लेकिन उनको मना किया इसलिए कि आप उसके पास आपका राज चला जाएगा ना। तो आज भी हमें इस चीज की परवाह करनी है। आगे भी आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ या उनसे अदावत रखते हैं। तो जब ओहदा देने लगे तो इसमें भी ये चांस है कि वो आपको नुकसान दे, इसलिए उनको उन जगहों पे ना बिठाओ जो आपकी राज की हैं या जिसमें आप कोई ऐसा कोई जिम्मेदारी का ओहदा है। नंबर टू, दिली दोस्ती जैसे मैंने आपको बताया, देखें दोस्ती वही होती है जहां पे इंसान की अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां पे इंसान की तबीयतें मिलती हैं। आपके भी दोस्त जाहिर है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें फला मेरी दोस्त है लेकिन मेरी उसके साथ बनती नहीं, ये नहीं हो सकता। जाहिर है कोई बनती ही है तो आपने उसको दोस्त बनाया ना, वरना आपकी दोस्ती खत्म हो जाती। कोई ना कोई आपकी आदत मिलती है, तबीयतें मिलती हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, चलो 100% नहीं लेकिन अक्सर चीजों के अंदर आपकी और उनकी सोच मिलती होती, तभी दोस्ती होती। ऐसा नहीं हो सकता कि सोचें ऑपोजिट है और दोस्त बन के बैठे हैं, ये नहीं होता। तो ये तो एक सादी सी बात है ना जो सबको समझ में आने वाली है। अब आप खुद सोचें कि जब आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं तो असल में क्या है, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। वो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है ना? ऐसे तो नहीं हो सकता वो उनको उनके बारे में गुस्ताखाना बात करें और हमारे साथ दोस्ती रखी हुई, ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए रोका गया कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा, आपके दीन का नुकसान होगा। ये भी इसके शाने नजूल में बताया गया कि बनू कैनका का मुसलमानों के साथ मुआहदा था, ये आपको पता है यहूद का एक कबीला था, उनके साथ जब जंग की सूरत हाल पैदा हुई तो खजरज का कबीला, अब तो मुसलमान हो गया लेकिन मुसलमान होने से पहले ये जो खजरज वाले अंसार थे ना, तो इनकी हलीफ होने, ये लोग पुराने जमानों में ना, लोग ये इस तरह की पुलिस वगैरह और ऐसे फौज वगैरह तो होती नहीं थी, लोग हलीफ बन जाते थे, कबीले एक दूसरे के हलीफ होते थे, यानी समझ लें कसम खा के एक दूसरे के साथ जीने मरने की एक मुआहिदा कर लेते थे कि बस अब हमारा दोस्त आपका दोस्त, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन, हमारे से कोई जंग करे वो आपके साथ जंग है, हमारे साथ कोई दोस्ती करे वो आपके साथ दोस्ती। तो इस तरह हो जाते थे, एक बन जाते थे। अब क्या हुआ कि जब बनू कैनका के साथ ऐसी एक समझ लें एक जंग की सी एक टेंशन हो गई, उस वक्त हजरत के जो लोग थे जाहिर है पुरानी उनकी इनके साथ ताल्लुकात और दोस्तियां और ऐसी थी, तो इनके लिए एक इम्तिहान था ये कि अब ये क्या करेंगे, क्या ये अब उनके साथ खड़े होते हैं या मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। और ये भी एक बहुत मुश्किल और वो था इनके लिए, मुनाफिकीन के लिए फैसला करना, क्योंकि मुनाफिकीन आपको पता है कि वो तो दुनिया के बंदे हैं, उनके लिए तो दोस्ती वही है जहां पे मफाद है। उस वक्त आप देखें दो लोग हैं, एक है हजरत उबादा बिन सामित और एक है अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था। जब ये आयतें उतरी तो अब्दुल्ला बिन उबादा बिन सामित जो थे, जिनकी उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, बड़े ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ये सारी दोस्तियां खत्म करता हूं, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती काफी। और अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा कि मैं तो बड़ा दूर अंदेश हूं, दूर की सोचने वाला हूं, मुझसे नहीं ये हो सकेगा, मैं नहीं उनके साथ दोस्तियां खत्म कर सकता। इस पे ये आयतें उतरी थी और आप आगे भी देखेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब बदर में मुशरिकीन को शिकस्त हुई तो बाज मुसलमानों ने अपने मिलने वाले यहूदियों से कहा कि यही तुम्हारी हालत हो, इससे पहले ही तुम इस दीन पे वो कबूल कर लो। तो उन्होंने जवाब दिया कि बस तुम तो चंद कुरैशियों को तुमने अपने ये लड़ाई के जौहर दिखाया तो तुम समझने लगे हो तुम बहुत बड़ी चीज हो गए, हमसे पाला पड़ेगा तो पता चलेगा। इस पे ये जो हजरत उबादा वाला और अब्दुल्ला बिन उबई वाला जो मुकालमा है, ये मैंने जो आपको कहा ये हुआ था। फिर मतलब कहा गया कि भाई इनसे आप ताल्लुक नहीं रख सकते, ये आपस में एक है। तो अब हमें बताया गया और हमें ये इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने दे दी कि देखो ये आपस में एक दूसरे के औलिया है, तो इशारा किस बात की तरफ है कि तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तियां करो, ना कि इनके साथ। और फिर बहुत एक सख्त बात कही गई, वह मिनहुम, जो तुम में से इन लोगों के साथ ऐसी दिली दोस्तियां रखेगा तो फिर वो उन्हीं में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। दोस्त के दीन पे होता है मतलब क्या, कि जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है आखिर आप उसके रंग में रंग ही जाते हैं। आपका दोस्त या तो आपके रंग में रंग जाएगा या आप उसके रंग में ही रंग जाएंगे, एक तो चीज होगी, तो यानी दोनों का रंग एक जैसा ही हो जाएगा। फिर जो यहूदियों से दोस्ती रखेगा, ईसाइयों से दोस्ती रखेगा, फिर आखिर उनके तौर तरीके तो अपना ही लेगा। तो हमें कहा गया हमने दोस्ती किसके साथ रखनी है, अब ईमान वालों के साथ, ताकि ईमान वालों का रंग चढ़े, अपने राज के मामलात उनको नहीं दे देने, उनके हवाले नहीं कर देने। और हाँ, मगर उनके साथ काम कारोबार, उनके साथ मुआशरती मामलात, उनके साथ हमसाइगी के ताल्लुकात, ये सारे आप रखें, इससे नहीं इस्लाम रोक रहा। उनके साथ हमदर्दी के इस लिहाज से कि कोई मसलन है, किसी कोई जरूरतमंद है, कोई जख्मी है, कोई किसी कोई तकलीफ के अंदर है, अब आप कहें नहीं हमें तो मना किया गया, हमने तो उसकी हेल्प ही नहीं करनी। नहीं, आप आगे बढ़ के हेल्प करें किसी की, कोई मरीज आपके पास आ गया है कोई, तो वो सारी चीजें अपनी जगह है। मगर आप समझ सकते हैं ना, जो उठना बैठना, जो हम प्याला हम निवाला जिसको कहते हैं, वो नहीं आप बन सकते इनके साथ। अब आज के दौर में जो विलायत है, जो ऐसी गहरी दोस्तियां हैं, वो सिर्फ साथ बैठने वाली नहीं है, आए तो दूर बैठ के भी ऐसी दोस्तियां रखी जाती हैं। और वो कैसे कि जब आप इंटरनेट पे हैं, दुनिया बहुत एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना, तो आप अब उनके कल्चर, उनका साथ उठना बैठना, उनके ऐसे ही लगता है जैसे उनके माशरे के अंदर उनकी मजलिसों में बैठ गए। आज ये दूरियां दूरियां नहीं रह गई, आज औलिया बने में इस तरीके के साथ। तो हमें बता दिया गया कि ये काम नहीं करना। इन अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह फिर हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। देखें जालिम कौन होता है, वो जो हकदार को उसका हक ना दे, वो जालिम है। यहाँ पे हक क्या था कि आपके दिली दोस्त वो हैं, वो जो मुसलमान है, जो ईमान वाले हैं, आगे भी बता दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, उनको दोस्ती उनके साथ की, तो अल्लाह ताला फिर उन ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता, यानी वो जिस रास्ते पे फिर उस पे ही चलते रहे। हम सोचते हैं ना बस कलमा पढ़ लिया, हम इस्लाम में दाखिल हो गए, बस नमाज पढ़ ली और ये तो हमने बस पूरा इस्लाम हमारा मुकम्मल है। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, अभी तो आगे शुरू होगा जहां पे ये बातें आ गईं कि ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना, वहां पे भी इस्लाम को लेकर आओ, अपनी जिंदगी के हर फेज में इस्लाम को लाना पड़ेगा। याद रखें, मुस्लिम कहना अपने आप को या मोमिन कहना अपने आप को, ये कोई टाइटल नहीं है कि मैंने अपना नाम मुसलमान रख लिया, ये किरदार है, याद रखिए किरदार है, एक अमल का नाम है। जो खुद का नाम मुसलमान रख ले, मोमिन रख ले, लेकिन अगर वो इस्लाम का दिफा करना नहीं जानता, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करना नहीं जानता, वो लोग कोई आपके दीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके दीन को घटिया समझते हैं और आप उनको कोई जवाब नहीं दे पाते, तो फिर ये कैसा मोमिन है? एक आदमी समझे अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता, उनको कोई खर्चा पानी नहीं देता, उनको पूछता ही नहीं है, तो सारा माशरा उसको बुरा कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम कैसे बाप हो, तुम कैसे शौहर हो, कोई बीवी बच्चों का ख्याल ही नहीं है तुम, बस तुम अपना हक जताने आ जाते। तो हम भी इस्लाम के साथ ऐसे ही कर रहे हैं, अपना हक जताने आ जाते हैं, हाँ मुसलमान है मुसलमान, लेकिन कोई इस्लाम के बारे में क्या नजरिया रखता है, वो कैसा इसको देखता है, इसकी हमें कोई ख्याल नहीं, इस्लाम का कोई ख्याल नहीं है, उसको फेंका पड़ा है। तो ये कोई चीज नहीं होती कि ये एक कोई मतलब कि हमारा अपना कोई रंग ही ना हो, हम बस दूसरों को जैसे देख रहे हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। अब हमने उनको देखा, उनके जैसे बनने की कोशिश की, जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हो गए, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, हमने उनको अपना औलिया में से बनाया हुआ। देखिए मैंने आपको जैसे बताया ना, दोस्ती होती ही उस जगह है जहां पे आपके आपस में सोच मिले, वो इसके अलावा आप दोस्त नहीं, गहरे दोस्त तो नहीं बन रहे। हाँ जान पहचान, हेलो हाय जिसको हम कहते हैं, सलाम दुआ जिसको हम कहते हैं, वो आपकी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मुसलमान है काफिर है आप सबसे अलग सलग रखते हैं, लेकिन यहां पर आके इस्लाम ने आपको एक हद दे दी है, नहीं इससे आगे नहीं, ठीक है। और असल में अगर आपको डेप्थ में जाना है ना इस बात के, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, तो ये पता है क्या कहा जा रहा है, उनका कल्चर ना अपनाओ, उनके जैसे ना हो जाना, असल में ये हमें कहा जा रहा है। आज हम ये हाल पे आ गए हैं कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यतीमों की तरह, कभी इधर से ले लिया कभी उधर से ले लिया, जो सुना वो करने बैठ गए, जो देखा वो करने बैठ गए, नकाल है, नकाल नकल करने वाले। आप देख आप अपने वाकई आप गौर करना, हम सिवाय नकाली के और कुछ नहीं करते, बर्थडेज हैं वो भी किसी की नकाली है, बेबी शावर हो रहे हैं नकाली, ब्राइडल शावर नकाली, मेहंदियां आपकी ये नकाली, किसी ना किसी की नकाली है कहीं ना कहीं, आप देख लें पहनने ओढ़ने में नकाली, बोलने में नकाली, रहने सहने में नकाली, नकल करने वाले। वैसे हमारे यहाँ हमारे मुल्कों में प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है नकालों से होशियार रहे, कोई नकली चीज पसंद नहीं करता, मगर दीन के मामले में हमने सारी दुनिया का गंद अपने पास जमा कर लिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं है, हालांकि आपको पता है कि इस दुनिया में अगर सिर्फ मुसलमान वाकई अपने दीन के साथ चिमट जाए ना, चिमट जाए, तो एक तहाई दुनिया कुफर से पाक हो जाएगी, मुनाफकत से पाक हो जाएगी, क्योंकि हर तीन में से एक बंदा मुसलमान है। सहाबा कराम देखें कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से टस से मस नहीं होते थे। इतनी सख्ती से उन्होंने इसके ऊपर अमल किया ना, कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो उनकी जिंदगी में जरा बराबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बाहर। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े करीब से देखा, वो इस दीन के मुहाफिज थे। इसी वजह से आज ये दीन हमारे पास असली सूरत में पहुंचा है महफूज होके। और जो आज लोग हैं उनका हाल क्या है, हर तरफ से इधर से लेना इधर से लेना इधर से लेना, भूखों की तरह। और आज इनका अपना कुछ भी नहीं है। तो हमें बता दिया गया, दोस्ती का भी अल्लाह ताला ने हमें बताया कि कहाँ पे करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। हाँ, मुनाफिकों का क्या हाल होता है फिर? देखिए, दोस्ती बाज दफा ना की जाती है मफाद के खातिर। सारी दोस्तियां इंसान बड़ी दिल के साथ नहीं कर रहा होता कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बाज दोस्तियां इंसान करता है कि यहां से मुझे फायदा मिलना। उसका भी सुन ले, फतरल्लदीन फी कुलूबिहिम मरदुन, बस तुम देखोगे उन लोगों को जिनके दिल में मर्ज है। किस चीज का मर्ज, किस चीज की बीमारी? सूरह बकरा से हम पढ़ रहे हैं बीमारी के बारे में। क्या बीमारी? निफाक की। युसारिउना फीहिम, वो भाग भाग के जाते हैं उनके अंदर, दौड़ धूप करते हैं उनमें। लास्ट टाइम भी हमने इस भागने के बारे में पढ़ा था, जो उनकी कोशिशें, जो उनकी एक्टिविटी, सरगर्मियां जो उनकी हैं, उनके ऊपर कुर्बान हुए जाते हैं। किन पे? फी हिम की जमीर किधर जा रही है? यहूद और नसारा, यानी उनमें घुसने की कोशिशें करते हैं। यकूलूना, वो कहते हैं, नक्शान तुसीबना दायरा, हमें तो डर है हमें तो कोई मुसीबत ना पहुंच जाए। अब आप पीछे जहन में वो भी रखिए जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि अब्दुल्ला बिन उबई क्यों इतना ज्यादा उनके साथ ताल्लुकात रखने पे मुजिर था, कि वो कहता था मुझे तो डर है आगे को कल को पता नहीं क्या हो जाए। जमाना है ना, कल को क्या गर्दिश जमाना हो, कोई मुसीबत आ जाए, क्या पता मुसलमानों को कोई शिकस्त ही हो जाए। और आप उस सोसाइटी में देखें, उस सोसाइटी में यहूदी ऐसे थे जैसे आज मुसलमानों के लिए बेस्ट है कि जो ये कर रहे हैं ना बस वो ही ठीक है। उनको भी ऐसे लगता था कि ये तो किताब वाले हैं, और किताब वाले होने के नाते इनके पास तो बड़ा इल्म है, और ये तो बड़े पुरानी तहजीब के मालिक हैं, और ये तो बड़े उनको ऊपर समझते थे अपने से। तो अब ये देख रहे हैं कि मुसलमान तो अभी नई नई उभरती हुई एक ताकत है, ठीक है, एक ताकत बनी है, लेकिन अभी नए नए हैं। क्या पता इनका कल को वो गालिब आ जाए, इनको शिकस्त हो जाए, तो हमें बना के रखनी चाहिए भाई, कहीं से भी बिगाड़ो नहीं। वो तो बड़ी ताकत है, इनका क्या है? तो पिसे हुए मुसलमान वहां से आए हैं हिजरत करके, अब यहाँ पे ये शिकस्त खा गए तो हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें इनसे निबटना पड़ेगा, तुम्हारी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये चीज उनको करती थी कि हम क्यों उनसे बिगाड़े? आप कहते हैं उनके साथ दिली दोस्ती ना रखो, हम तो रखेंगे भाई, ताकि कल को कोई मुसीबत ऐसी आए, कोई परेशानी आ जाए, तो कम से कम वो हमारे कुछ साथ देने वाले हों, कम से कम वो ये सोचेंगे कि ये हमारे दोस्त थे। ठीक है ना, जो मुनाफिक होता है वो दो कश्तियों का सवार होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के राज जाके दूसरों को देते हैं, इनके नाम देते हैं, उनके लिए जासूसियां करते हैं। किस लिए करते हैं? कि ये हमें अपना समझे, हम इनके साथ हों, जब कोई मुसीबत आए तो ये हमें बचा ले। दुनिया की तारीख ने साबित किया है कि ऐसे लोग कहीं के भी नहीं रहते जो दो कश्तियों के सवार होते हैं, और दूसरे भी उनको कभी ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं जिन्होंने अपनों को दगा दे दी, उनको धोखा दे दिया, उनसे गद्दारी की, ये हमारे भी नहीं बन सकते। तातारियों ने ऐसा ही किया था ना, जिन मुसलमानों ने उनको जाके राज दिए और उनके बन के बैठे, किस लिए? कि कल को जब मुसीबत आएगी और ये आ जाएंगे तो ये हमें छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ये तुम्हें भी नहीं हमने छोड़ना, तुमने अपनों के साथ गद्दारी की, तुम हमारे कैसे होगे? उन्होंने उनके भी सार उड़ा दिए ऐसे गद्दारों के। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी के पलड़े में अपना वजन डाल दें और ये सोचें कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, और आप अपने लोगों से बेवफाई करें। ये वफा के रिश्ते हैं, ईमान के साथ और ईमान वालों के साथ वफा होनी चाहिए। जिस कलमे को आपने पढ़ा है उसके साथ वफा करो कि अब मैंने कश्तियां जला दी, अब जीना मरना इस कलमे के ऊपर ही है। ये नहीं है अगर आए जरा सा प्रेशर आया, आए कोई कुछ ऐसा ना हो जाए, ओहो भाई इनकी भी मान लो, ओ भाई इनके जैसे भी बन जाओ, ओ भाई इनको भी दिखाओ कि हम इनके जैसे ही हैं ताकि हमसे खुश हो जाएंगे ना, फिर ये हमें फिर उनमें शामिल नहीं करेंगे ये फनेटिक किस्म के मुसलमानों में। आप सोचते हो कि इनके जैसे बन बन के दिखाओगे तो आपसे खुश हो जाएंगे, वो आपको अपना समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो आपको फिर भी मुसलमान ही समझ के मारेंगे। जब पिटाई होगी तो फिर सबकी ही होगी। तो जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि हम अपने ऊपर रंग चढ़ा लेंगे इनका, तो वो जो रंग चढ़ाता है ना वो गिरगिट होता है, जो जैसी जिस चीज के ऊपर जाता है वैसा ही रंग कर लेता है ना, आधा तीतर आधा भुट्टे, वो किसी तरफ का भी नहीं रहता फिर। तो ये लोग किसी तरफ के भी नहीं रहते। तो इन लोगों को तुम देखोगे जिनके दिलों में बीमारी है, और अल्लाह ताला ने इनको मुनाफिक डिक्लेयर किया, क्योंकि ईमान वाला जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता। उसको पता है कि मेरा जीना मरना एक अल्लाह के कलमे के ऊपर है, बस यही मेरी जिंदगी है, और मौत आ गई तो इसी पे मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा ना, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ना। ऐसे लोग मुतजलजल रहते हैं जो मुनाफिक होते हैं। ऐसा ताल्लुक कैसा ताल्लुक है फिर अल्लाह के साथ? फिर अल्लाह भी कबूल नहीं करता ऐसे ताल्लुक को जिसमें खोट है। अच्छा आप बताइए, आपके कोई दोस्त हो, आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, वो दूसरी तरफ चल पड़े, वो आपके दुश्मनों के साथ जाके मिल जाए, वो आपके मुखालिफीन के साथ बैठने लगे, फिर जब आपके दिन अच्छे आ जाए तो फिर आपकी तरफ आ जाए, फिर आपके ऊपर कोई बुरी मुसीबत आई तो फिर वो उधर चली जाए। आप ऐसे को अपनी दोस्त समझेंगे क्या? अल्लाह के दीन में भी कैसे वफादार समझा जा सकता है उन लोगों को जो कि इस तरह इधर उधर लुढ़कने वाले। तो इसको अपनी जिंदगी में एक असूल याद रखें कि जीना है मरना है तो इस दीन के साथ ही है। कुछ भी हो जाए, आप मुसलमानों के ऊपर कोई आफतें आ जाएं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, किसी मुसीबत में फंस जाएं, कोई उनके ऊपर मसले आ जाएं, तो ये नहीं कि गर्दिशे जमाना, वो कहते थे हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो क्या हम डरते हैं भाई इस बात से। तो ऐसा नहीं करना कि इस डर की वजह से भाग भाग के उनके कैंप में जाके बैठे, वो राजी हो जाएं। ये पता है किस चीज की कमी है? तवक्कुल की। जब तवक्कुल नहीं होता ना, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो बचाएगा ना, वो अल्लाह बचा नहीं सकता मुश्किल वक्त में। जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचा लिया, वो अल्लाह नहीं बचा सकता क्या? कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर के सामने खड़े हुए और पीछे फिरौन है तो समुंदर को फाड़ दिया, वो अल्लाह क्या नहीं बचा सकता? जिसने फिरौन के पूरे लश्कर को गर्क कर दिया, वो अल्लाह क्या नहीं बचा सकता? जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी तले बचा लिया, इसका मतलब उस पर भरोसा ही नहीं। भरोसा है तो इन लोगों के ऊपर है ना, कि आए अगर ये हमारे खिलाफ हो गए, आए अगर ये हमारे से नाराज हो गए, आए इनको राजी रखो भाई, इनके साथ दोस्ती बना के रखो, आखिर रहना है ना इनके साथ। और ये इंडिविजुअल्स पे भी है हमारे, और हमारे मुल्कों के ऊपर भी है। वो मुसलमान मुल्क भी जो अपना भरोसा उनके ऊपर रखते हैं, जो यहूद नसारा है, इनके साथ बनाओ तुम्हारी तरक्कियां होंगी, और आज देख लें कैसे उनको मानने के लिए भाग रहे हैं कि इनको तस्लीम कर लो। कि किस लिए? मफाद, फायदे मिल जाए, या इनको गर्दिशे जमाना का डर है, हमारे पर कोई मुसीबत आ जाए तो इसके साथ दोस्ती बना के रखो फिर ये काम आएंगे। तो मुनाफिकत का किरदार इंडिविजुअल्स में भी, इनफरादी तौर पे भी है। मुनाफिक भी भागता फिरता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और मुल्कों में भी यही हाल है। सोच लें कि हमारे भरोसे अल्लाह के ऊपर कितने, कितना यकीन है हमें अल्लाह के ऊपर। मोमिन तो इस्तकामत का पहाड़ होता है। आए मुसीबतें किसके ऊपर नहीं आती, मुसीबत मुश्किलात मसाइल किस पे नहीं आते, आते हैं, मगर उसका ईमान ऐसा होता है कि उसके साथ टकरा के गिर जाते हैं, उसको हिला नहीं सकते। मुनाफिक तो तिनके की तरह है, उड़ता फिरता है हवा के जोर पे, कभी इधर कभी उधर, फिर कहीं का भी नहीं रहता। फअसल्लाहु अन यातिया बिलफतहि औ अम्रिन मिन अंदी, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला, आसा का जब लफ्ज अल्लाह के लिए आ जाए ना, वैसे इसका मतलब होता है मुमकिन है, हो सकता है, उम्मीद है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह के लिए ये आ जाए तो फिर उम्मीद की बात नहीं है, फिर चांस की बात नहीं है, फिर पॉसिबिलिटी की बात नहीं, फिर यकीनी बात है। यकीन का फायदा देता है ये, फिर आसा जो है यकीनी बात है कि अल्लाह ताला ले आए फतह औ अम्र मिन अंदी, या कोई और भी फैसला ले आए, फयुस्बिहु अला मा असर्रु फी अनफुसिहिम नादिमीन, फिर वो हो जाएंगे उस पे जो उन्होंने अपने दिलों में छुपाया हुआ था, निदामत उठाने वाले। देखिए क्या कहा जा रहा है, अल्लाह अकबर, ये वो कहा जा रहा है जिसकी मुझे हमेशा ख्वाहिश होती है। जब लोगों को देखते हैं ना कि देखो कैसे मरते चले जा रहे हैं, कभी क्रिसमस मनाते हैं, कभी वैलेंटाइन मना रहे हैं, कभी कुछ मना रहे हैं, बस जैसे वो हैं वैसे हम हो जाएं, कभी वैसे लिबास पहनते हैं, कभी वैसी बोलचाल रखते हैं, इतने ज्यादा इंप्रेस हैं, इनके दिलों में इस कदर इनका रोब है, इस कदर इनके दिलों के अंदर उनकी हैबत है और उनकी बढ़ाई है कि अगर हम भी उनकी जैसी चीजें करेंगे ना, हम भी बड़े हो जाएंगे, हमारी भी एक यानी समझ लें कि दुनिया के अंदर हम भी एक माने जाएंगे, ये चीज दिलों में है आज मुसलमानों के। लेकिन आपको बताऊं, एक वक्त वो भी था, यकीन जानने, कि ये लोग हमारी तरफ देखते थे। ये तो मुसलमानों ने अपने करतूतों की वजह से आज इस हाल पे पहुंच गए कि ये फकीर हो गए, फकीर माल में नहीं, अपने दीन ईमान के अंदर फकीर हो गए, इनके पास कुछ नहीं रहा ना, ये दुनिया के रहे तो ना आखरत की, तभी उनकी तरफ को देखते हैं, तभी कि इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने अपना सरमाया जो खो दिया, अल्लाह पे तबक्कुल खो दिया। एक दिन वो भी था कि ये लोग मुसलमानों की तरफ देखते थे, मुसलमान दुनिया में ऐसी शानो शौकत रखते थे, ऐसी उनकी अजमत थी, इतना एहतराम था उनका कि ये लोग देखते थे, इस पे फखर करते थे, अरबिक लैंग्वेज के ऊपर इसको आर्ट समझते थे, मुसलमान नौकर रखते थे, नौकरानियां रखते थे अपने बच्चों की तरबियत के लिए, जैसे आज कोई बहुत अमीर लोग किसी गोरी औरत को ले आते हैं कि हमारे बच्चे को ये संभाले, उसकी गवर्नेंस ये हो, उसकी बेबी सिटर ये हो, इससे हमारा बच्चा अच्छी मैनर सीखेगा, वो कभी मुसलमानों को हायर करते थे, मुसलमानों के लिबास पहनने में फख्र करते थे। लेकिन आज जब मुसलमानों का ही कुछ नहीं रह गया और इनका डंका बजने लगा दुनिया के अंदर, तो आज मुसलमान इनकी तरफ ऐसे देखते हैं हसरत से, अरे ऐसे हम भी हो जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फासल्लाहु अन यातिया बिलफत, और ऐसा हुआ था उस वक्त जब ये आए थे उतरी, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया कि ऐसे यकीनी बात है कि ऐसा होगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह देगा, और वाकई मक्का फतह हो गया, खैबर फतह हो गया, दूर दूर तक मुसलमानों की एम्पायर चली गई। ओ अम्र मिन इंदी, तुम तो सोच रहे हैं ना हाय इनको शिकस्त हो गई तो हमारा क्या बनेगा, फिर हम कितनी मुसीबत में फंस जाएंगे, तो अल्लाह ताला चाहे और अल्लाह ताला ऐसा कर दे तो फिर क्या होगा, और अम्र मिन इंदी, या कोई और फैसला कर दे अपनी तरफ से, मतलब इनकी कोई रुसवाई का हुक्म दे दे, अल्लाह ताला इनको जिला वतन कर दे, इन यहूदियों को, जैसे हो गए थे ये जिला वतन कर दिए गए थे मदीना से, एक्सपेल कर दिया गया था इनको, भाई उसमें हो, फिर इनकी क्या हालत होगी, फिर इनकी ये हाल होगी, तो ये इन्होंने जो दिलों में छुपाया हुआ है ना, क्या छुपाया हुआ है, ये निफाक के उधर हो जाओ, उधर भी रखो बना के, इधर भी बना के रखो, भाई कहीं बिगाड़नी नहीं है हमने, वो इसके ऊपर नादिम होंगे कि किस बात पे नादिम होंगे। देखिए जो ऐसा बंदा होता है ना, उसके लिए निदामत ही निदामत है इस दुनिया में, क्या निदामत है, ये लोग अच्छे रह गए, देखो इन्होंने दुनिया भी पाली, और हम इधर ही लुढ़कते रहे, ना वो हम पे यकीन करते हैं ना मुसलमान अब हम पे यकीन करते हैं। आखरत में भी इनके लिए निदामत है, कब्र में भी निदामत है, कयामत के दिन भी इनको शर्मसारी होगी, निदामत होगी। हमने क्या कर दिया? ये सच्चा मुसलमान देखो कामयाब हो गया, वो एक दीन को पकड़ के मजबूती से खड़ा हुआ, तो आखरत में भी वो कहां से कहां दर्जे ले गया। आए हम ऐसे ही रह गए ना, हमें दुनिया मिली, वो तो वैसे ही मकलूब हो गए, वो तो वैसे ही हार गए, उनको तो शिकस्त हो गई जिनके पास हम भाग भाग के जाते थे, हमें तो दुनिया के अंदर भी कोई फायदा ना मिला। जिनके डर की वजह से हमने ये खेल खेला हुआ था, वो तो वैसे ही शिकस्त खा गए, तो यहां पे भी नहीं कोई फायदा हुआ ना, और आखरत का भी नुकसान। तो अब उनको फिर निदामत होगी। और ये मैं जो आपको बात कह रही हूं कि आज जो लोग भी इतना भाग रहे हैं, इस कदर उनके कल्चर को और उनकी चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला एक वो दिन दिखाए कि जिसके अंदर मुसलमानों को फिर गलबा हो जाए, मुसलमान फिर दुनिया पे छा जाए, मुसलमानों की फिर वही शानो शौकत हो जाए, तो फिर इन लोगों का क्या हाल होगा? फिर भागते हुए इधर को आएंगे, फिर शर्म ना आएगी? कल तक उनकी झोलियों में जाके बैठते थे, उनकी गोदों में बैठते थे, आज इधर को भागे आ रहे हो, फिर पछताएंगे हम इधर इनके साथ ही हो जाते, आज एक तरफ तो होते। एक दिन वो वाकई आएगा, ये वाकई इस्लाम पूरी दुनिया पे छा जाएगा जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे। तो ये किसके उरूज का दौर आता है, कयामत से पहले आने वाला है, फिर क्या होगा? तो यहां पे सिखा दिया गया कि भरोसा अल्लाह पे करो, मुनाफिकीन की तरह ना बनना है, अपने हर तरफ अपना रखा हुआ है, ना यहां पे कुछ कमी आए ना वहां पे कुछ कमी आए, वरना नादिम ही रहोगे, फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। वयकूलुल्लदीन आमनू, और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए, आहा उलाए, क्या ये हैं वो लोग, अल्लदीन अक्सम बिल्लाही जादा ईमानीम, जो अल्लाह की कसमें खाते थे, इतनी पक्की कसमें, क्या खाते थे, इन्नहुम, के बेशक वो लमाकुम, तुम्हारे साथ हैं। ये क्या वो है? अब ये किसके साथ की बात हो रही है? यानी ईमान वाले पक्के कहेंगे, इनको देख के इसके दो माने हो सकते हैं कि ये ही वो लोग हैं जो यहूदियों और नसारा और इनके पास जाते थे और काफरों के पास जाते थे, और उनको कहते हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई उनको बीच में मैसेजिंग करता था कि तुम फिक्र ना करो, बनू कैन का कोई यकीन दिलाता था हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गिव अप ना करना बनू नजीर को, इनको, ये मुनाफिकीन जो थे उनको यकीन दिलाते थे कस्में खा खा के कि फिक्र ना करो, अगर मुसलमानों ने हमला किया हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, तुम बस डटे रहो, जमे रहो। तो इनके तो डबल फेस है। तो इस वक्त फिर मुसलमानों के सामने जब ये आएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, तो वो हैरान होके कहेंगे ये हैं वो लोग जो इनके पास जा जाके ऐसे कसमें खाते थे, आज इनका देखो क्या हुआ। और दूसरा माना ये हो सकता है कि मुसलमान हैरान होके कहेंगे कि ये वो लोग हैं जब ये एक्सपोज होंगे कि ये तो कहते थे इन्ना हम के बेशक वो लमा तुम तुम्हारे साथ हैं, यानी ये हमें कहा करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इनके ये किरदार है कि ये उनके साथ जाके उनको खुफिया पैगाम देते हैं। हबीतत आमालुहुम फअसबहू खासिरीन, इनके तो सारे ही अमल जाया हो गए। हाँ, सब अमल, कौन से अमल, जो नेकियां, जो दीनदारी के काम, कभी ये नमाजें पढ़ते थे, कभी ये कुछ चैरिटी भी थोड़ी बहुत कर देते थे, या कोई भी और ऐसा काम, सब जाया हो गया। क्यों जाया हो गया? नेकी तो कोई के तो काम थे, जमात से नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि उन कामों में इखलास नहीं था, वो अल्लाह के लिए नहीं थे, निफाक था अंदर। जब खोट अंदर होता है ना, तो फिर इंसान चाहे कितने भी नेकी के बजाहिर काम कर ले, कितनी भी दीनदारी दिखाए, वो सब नुमाइशी है, ऊपर ऊपर की है, इससे इंसान खुद को भी धोखा देता है और सोचता है कि मैं पता नहीं नाउजुबिल्ला अल्लाह को भी धोखा दे दूंगा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह ताला नीयत का इखलास देखता है, जाहिर का अमल नहीं देखता कि जाहिर के अमल कितने खूबसूरत हैं। मसलन लोगों को खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी, लेकिन इनकी ये नेकी भी काम नहीं आई। जमात से नमाज पढ़ना कोई छोटी बात तो नहीं है, मस्जिदों में आते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग हमें मुसलमान समझें और अपने साथ समझें। बाज दफा जिहाद में भी शरीक होने के लिए निकले हैं मुसलमानों के साथ, सिर्फ इसलिए कि ये भी हमें अपना ही समझते रहे। तो ये अमल जाया हो जाते हैं जब इनमें खोट होता है, जब अंदर से नीयत खालिस ना हो। तो आप चाहे कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे नमाजें पढ़ रहे हैं, चाहे आप कितने टेस्ट दे रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, सर्टिफिकेट आपके हो रहे हैं, कुछ भी उसका फायदा नहीं है, वो कबूल ही नहीं है। फासबाहु खासिरीन, तो वो हो गए खसारा पाने वाले। नमाज भी गई, रोजे भी गए, सदका भी गया, सब जीरो। सारी जिंदगी उन्होंने कोशिश भी की, मगर एंड में क्या है, खसारा। क्या मतलब है, इनको नहीं कोशिश लगती होगी, कोशिश करनी पड़ती थी ना उनको। लेकिन देखें, कोशिश वो भी कर रहा है जो एक ईमान वाला है, और कोशिश मुनाफिक भी कर रहा है। दोनों की कोशिशों का अंजाम मुख्तलिफ है, किस वजह से, कि जो खोट है दिल के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब ये बहुत ही अहम बात आ रही है, जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी है, और ईमान जो सच्चे ईमान वाले हैं उनको भी एनकरेजमेंट है। और जो लोग अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ने वाले हैं उनको भी उनके औकात बता दी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मैयर्तद्दा मिनकुम। अच्छा, अब कहलाते तो मुनाफिक भी ईमान वाले ही थे, ये सारे सबकी बात आ रही। या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू, तो नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में सब ईमान वाले, जिसका ईमान कम है, ज्यादा है, कमजोर है, मजबूत है, या जो ईमान का दावा जो भी कर रहा है, मैयर्तद्दा मिनकुम, जो भी तुम में से मुर्तद हो जाए, अनदीनी ही, अपने दीन से फिर जाए, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह ताला कोई और कौम, अनकरीब जल्दी कोई और कौम ले आएगा। यानी तुम ये ना समझना कि अल्लाह ताला के दीन को कोई तुम्हारी ही जरूरत है, ये ना कभी ध्यान में लाना। पता नहीं अल्लाह ताला ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नमाज के लिए आओ, ये करो, ईमान वालों के साथ दोस्तियां करो, ऐसा करो और ऐसा ना करो, तो पता नहीं उसको हमारी कितनी की जरूरत है, नऊजु बिल्ला। ये दिमाग से निकाल देना, अल्लाह के दीन को किसी की भी जरूरत नहीं है। वो अगर तुम सारे फिर भी जाते हो उसके दीन से, तो वो कोई और कौन ले आएगा। उसका दीन अफराद का मोहताज नहीं है, अफराद उसके दीन के मोहताज है। अगर मुझे या आपको आज कुरान पाक सीखने की कोई तौफीक मिली है ना, या कोई किसी स्केल पर भी कुछ भी काम करने का हमें चांस मिला है, थोड़ा या ज्यादा, इस पे कभी रोना ना रोए, आए बड़ा काम दे दिया, आए बहुत करना पड़ता है, मैं तो बड़ी ही बस मुश्किल में, जैसे मेरी जान फंसी भी है, बस मैं तो सारा दिन यही काम, बस इसमें ही है, लगी हुई हूँ, ये हो रहा है। इसके ऊपर हाय वाय ना करें, इसके ऊपर रोने ना रोए, लोगों को बता बता के हमदर्दियां ना लें, कि जैसे कोई कहे कि कितनी बेचारी मुसीबत में फंस गई। नहीं, इस नेमत पे अल्लाह ताला का इस कदर शुक्र अदा करें, इसलिए कि उसके पास अफराद की कमी नहीं है। वो तो कहता है वलिल्लाही जुनूद उस्समावाती वल अर्द, उसके लिए तो लश्कर है आसमानों के और जमीन के। हम तो सिर्फ इंसान है ना, उसके तो लश्कर है आसमानों जमीन में, जिन लश्करों की कोई गिनती नहीं है, और हम नहीं जानते कि कहाँ कहाँ क्या क्या उसका लश्कर है। उसके काम करने वाले तो बहुत है, ये तो हम ही शुक्र अदा करें कि उसने हमें चुन लिया, किसी काबिल कर दिया, कि हम उसके दीन में जरा अपना कोई हिस्सा डाल सके। तो फिक्र ना करें, ऐसे मुर्तद लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर ही दीन खड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला इनकी जगह पे नए लोग ले आएगा जिनका किरदार इनके जैसा नहीं होगा। वो कैसे होंगे, उनकी आगे खसूसियात आ रही हैं, वो इनके जैसे नहीं होंगे दीन को छोड़ छोड़ के भागने वाले, वो उनके जैसे नहीं होंगे बेवफाइयां करने वाले, उनके जैसे नहीं होंगे कि उधर भी जाके बनाए इधर भी बना के रखे, आए हम कहीं ये ना हो जाए कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, वो ऐसे नहीं होंगे, उनके किरदार में मुनाफकत नहीं होगी। देखिए इर्तिदाद एक तो ये भी होता है ना कि कोई दीन से ही फिर जाए, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए इससे कि इस्लाम से फिर के कुछ और बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, यहूदी तो बनते ही बन ही नहीं सकते, मगर कोई कुछ और भी दीन इख्तियार कर ले। सिर्फ वो नहीं होते बल्कि बाज लोग मुंह से तो नहीं कहते लेकिन वो मुर्तद हो चुके होते हैं अपने दीन से, फिर चुके होते हैं अपने दीन से, सारा का सारा छोड़ दिया होता है उन्होंने दीन को, वो दीन से एलर्जिक होते हैं, उनका नाम सिर्फ मुसलमानों वाला रह चुका होता है बस, वो भी उनका बस चले तो उसको भी बदल डाले, ये भी इर्तदाद है। तो जो मुर्तद होना चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दे दी गई कि आप ये ना समझना कि जो लोग दीन से फिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं अल्लाह और उनको ले आएगा, मुसलमानों को भी कह दी बता दिया गया, उनके लिए भी इनकरेजमेंट है जिनके अंदर ये खसूसियात हैं जो आगे आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो इनके मुकाबले में, यानी अल्लाह ताला ने एक तरफ मुर्तदीन की बात की और एक तरफ अपने वफादारों की बात की कि अल्लाह वफादारों को ले आएगा, अल्लाह के पास तो कमी नहीं है। तो मुनाफिकीन के मुकाबले में, इर्तदाद करने वालों के मुकाबले में फिर अल्लाह वाकई सहाबा कराम को खड़ा करता है, उनकी वो जो जमात थी वो अव्वलीन मिसदाक है इन सिफात का, यानी उनमें सबसे पहले ये सिफात पाई जाती और जो आगे आने वाली हैं, और कयामत तक के लिए जिन लोगों में भी ये सिफात पाई जाएंगी वो हैं अल्लाह के महबूब, वो हैं अल्लाह के प्यारे, और ये सिर्फ कोई एक शख्सियत की बात नहीं है, जो भी लोग ऐसे किरदार को अपनाएंगे। और यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि अल्लाह ताला ने एक पेशीन गोई दे दी कुरान पाक में कि एक इर्तिदाद का भी मरहला आएगा, एक वक्त आएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरजल मौत से ही ये शुरू हो गया था कि बाज लोग मुर्तद होना शुरू हो गए थे, बाज कबाइल हो गए थे मुर्तद, ठीक है, बाज ने जकात से इनकार कर दिया, कहते हमने कुछ सारा कुछ मानेंगे जकात सिर्फ हमने नहीं देनी, हजरत तो बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फिर उनसे जंग की थी, एक वो थे जिन्होंने फिर झूठे नबियों ने के पीछे ईमान रखा था, उनकी नबुवत के पीछे चल पड़े थे, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब था और भी कुछ लोग थे जिन्होंने नबुवत का दावा कर दिया, वो उनके पीछे चल पड़े, वो भी एक इर्तदाद था। और बाज ऐसे थे तीसरी किस्म के वो लोग थे जिनको वैसे ही इस्लाम उन्होंने छोड़ दिया था, तो ऐसे लोगों की तरफ इशारा है कि ऐसा भी वक्त आएगा, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं, दूसरी तरफ वो लोग भी होंगे, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा जिनका किरदार बहुत डिफरेंट है, उनका किरदार क्या है। और ये बहुत अहम बात है जो यहाँ पे बयान की गई, इसलिए कि एक ये मुकाबला हो रहा है दो ग्रुप्स का, एक वो है जो इर्तदाद वाले चाहे जुबान से बोल के करते हैं या उनकी जिंदगियों में ही इर्तदाद है, यानी जिंदगियां फिर गई हुई हैं इस्लाम से, दूसरी तरफ अल्लाह वाली जमात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वालिटीज हैं इनको जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया पहली उनकी क्वालिटी कि अल्लाह ऐसे मुर्तदीन के पीछे ऐसी कौम को ले आएगा, ऐसे लोगों को ले आएगा, युहिब्बुहुम, वो मोहब्बत करेगा उनसे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा, यानी सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की बात की, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, अल्लाह ताला इन बेवफाओं के मुकाबले में ऐसी शान वाली एक कौम पैदा करेगा जिनको अल्लाह अपना महबूब बनाए हुए होगा, वो मुर्तद नहीं होंगे कभी, अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। अब देखें एक तो बात समझ आती है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है, अल्लाह ताला के एहसानात है उसके ऊपर इतने हैं कि जिनको वो गिन भी नहीं सकता। वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे वो तो समझ आता है, वो तो बात होनी भी चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारी कायनात का मालिक है, वो एक जर्रे से मोहब्बत करे, ये है जो बहुत बड़ी बात है। मसलन आप अब ये देखें, कोई भी मिसाल अल्लाह ताला के साथ तो नहीं फिट हो सकती, मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रही हूँ कि मसलन है कि एक मुल्क का बादशाह है, वो किसी जगह जाता है तो वहां पे एक डोर कीपर है, दरवाजा बस वो खोलता है और बादशाह उसको कहता है कि तुम फलां फलां हो, मुझे तुम्हारा पता है और तुम बहुत अच्छे, तुम मेरी नजरों के अंदर तुम्हारा बड़ा मकाम है और मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। या एक जेनेटर है, सफाई करने वाला है, टॉयलेट और बाथरूम साफ करता है, उसको बादशाह ऐसे कह दे, वो बादशाह से मोहब्बत करे वो तो ठीक समझ आती है, भाई वो तो इतना वाकई इस काबिल है कि वो बादशाह है। लेकिन जब बादशाह उसको कहता है अपनी तमाम राया में से एक छोटे से बंदे को जिसका कोई हैसियत माशरे में नहीं समझी जाती, उसको जब वो कहेगा तो सोचे वो कितनी बड़ी बात होगी। इसी तरह इंसान की कोई हैसियत नहीं है इस कायनात में, बहुत ही छोटी और हल्की चीज है ये, जो हम अपने आप को समझते ना इंसान है बहुत ही बड़ी, पता नहीं मैं क्या फलातून हूं, मैं क्या चीज हूं, नहीं इंसान कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर, बहुत छोटी चीज है अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कायनात के अंदर। और अल्लाह ताला इंसानों में से कुछ इंसानों से कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये कितनी बड़ी बात है। कायनात का मालिक, खालिक, चलाने वाला, उसको सस्टेन करने वाला, कायम रखने वाला, उसकी तदबीर करने वाला, वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहने वाला, वो जिस पे कोई जवाल नहीं, वो जो शानों वाला है, करम वाला है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है, जिस पे कोई जोफ नहीं, जो हर आला सिफत का मालिक है, वो एक छोटे से जर्रे को कह रहा है कि वो उससे मोहब्बत करता है, तो सोचिए जरा कि वो कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसी है फिर? वो ऐसी है जैसी उसकी शान है, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपनी इताअत में मशगूल कर लेता है, उसको गुनाहों से बचाता है, ये अलामत है अल्लाह की मोहब्बत की। तो वो भी फिर उसके बाद उनकी बात आई, पहले अल्लाह ताला की बात आई कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, उसके बाद आई वह युहिब्बूनहू, और वो मोहब्बत करेंगे उससे, ऐसी कौम होगी। और सहाबा ने इसको साबित किया ना, अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की और वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे कि अल्लाह ताला के आगे उन्होंने हर चीज को कुर्बान कर दिया, कोई चीज उनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं रखती थी अल्लाह के नाम के आगे, अल्लाह के नाम पे मर मिटने वाले थे। देखें ये बोलना बड़ा आसान है, ये कहना बहुत आसान है, ये तो मेरे से और आपसे भी बुलवा लें तो हम भी कह देंगे हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व माहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तो लहक लहक के कहने को तैयार हैं, मेरा तो जीना मरना जी अल्लाह के लिए, मेरा तो ये अल्लाह के लिए मेरा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं ना, तो ये बिल्कुल सच नहीं होता, ये सिर्फ हमारी जुबानों की बातें रह जाती हैं। मगर सहाबा के साथ ऐसा नहीं था, उनकी सिर्फ जुबानों की बातें नहीं थी, वो बातें नहीं किया करते थे, वो करके दिखाते थे। उन्होंने अपने घर छोड़े इस दीन के लिए, अपने घर वालों को छोड़ा इस दीन के लिए, अपने काम कारोबार छोड़े इस दीन के लिए, सारी अपनी लाइफ छोड़ के, अपनी जिंदगी चलती हुई प्रॉस्परस लाइफ, खुशहाल जिंदगियां छोड़ के एक नई जगह पे एज रेफ्यूजीज, एज इमिग्रेंट्स वहां पे पहुंचे हैं। और रेफ्यूजी की क्या हैसियत होती है बताएं, रेफ्यूजी ही रहता है ना, किसी और मुल्क में आ गया, उसने पनाह ली है वहां पे, पनाह ली उन्होंने जाके मदीना के अंदर, जबकि उनका अपना वतन मौजूद था। इन किस लिए? सिर्फ एक अल्लाह के लिए। उन्होंने अपनी हर चीज कुर्बान करके दिखाई है, प्रैक्टिकली दिखाई, फिर वहां पे भी बैठ नहीं गए, उसके बाद भी जाने लगा दी अपनी, दिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत कैसी होती है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। आज दावे मुझसे आपसे कोई बहुत करा ले, हम कहेंगे हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, मगर ये बातें ही बातें हैं, यकीन जाने हमारी जिंदगियां उसका आईना नहीं है, हमारी जिंदगियां वो जो हमारी बातें हैं ना उसका साथ नहीं देती, नहीं है वैसी। और हम अपने दिलों से भी पूछे ना तो वाकई हमारे दिल भी गवाही देंगे कि ऐसा ही है, कि हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, काम कुछ नहीं। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, देखिए वो फिर ये भी लंबी एक वो बात है, अब इसके अंदर जाएंगे ना तो उसके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। वो एक एक उनके अंदर से बात आपसे ये शेयर करती हूँ कि वो अल्लाह के फैसलों पे राजी रहने वाले होते हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए शिकायत नहीं अल्लाह से। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो कोई शिकायत नहीं, अल्लाह हाय सारी कौम के अंदर एक मैं ईमान लाने वाला मुझे ये आग में डाल रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहा, इनको डालने दे रहा है, ये आग जला रहे हैं, इन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है, अल्लाह कोई मदद ही नहीं आ रही तेरी, ये क्या बात हुई। तो फौरन गिले शिकवे करते, दो नमाजें पढ़ के ही हमें ये होता है कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ये क्या हो गया, मैं तो नमाजें पढ़ती थी, मैं तो कुरान पढ़ती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ये मुश्किल क्यों आई, ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्या मैं ही रह गई हूँ। फौरन हमारी हम उन बातों को याद करने लगते हैं जो हमने अल्लाह के लिए की, हाँ मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, दुनिया तो ये भी नहीं करती, फिर मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आ गई। यानी अब अल्लाह ताला को तो मेरे पूछना चाहिए था बहुत ज्यादा, कि मैं तो बड़ा कारनामा सारा अंजाम दे रही। गोया हमें ऐसे लगता है हम बड़ा एहसान कर रहे हैं इस दीन के साथ कि हमने इसको अपना लिया, तो अल्लाह ताला को तो हमारी बड़ी फिर केयर करनी चाहिए थी, ये भी उसने हमारे ऊपर क्या मुसीबत क्यों आने दी। फरिश्ता आ गया कि मेरी मदद की जरूरत है, तो को कहते हैं नहीं कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं मदद की जरूरत, ये अल्लाह ताला अगर मुझे जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी। ये होते हैं मोहब्बत करने वाले, तो ये मोहब्बत की एक अलामत है इंसान को, मकाम, ये भी एक मकाम है, ये भी एक दर्जा है, हमें दर्जे भी है ना, सीढ़ियां समझ लें। कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कभी, ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, अल्लाह ताला की जो बंदों से मोहब्बत की अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, वो बंदा कैसा होगा, कोई हवाई मखलूक तो नहीं है वो, कोई ऐसा तो कोई ऐसी एलियन टाइप चीज तो नहीं है, या वो बड़े सफेद दाढ़ी है, ये है वो है, वो तो ये है बंदा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, ऐसी बात नहीं है, बड़े इसके स्टेप्स हैं। वो फिर बंदा जो होता है ना वो कैसा बन जाता है, उसको मकामे रजा मिल जाता है, खुशी हो या गम वो अल्लाह के साथ राजी, हर हाल में राजी, जो मुसीबत आए उसमें भी राजी। और अल्लाह ताला जो हदीस में आता है ना, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको आजमा लेता है, उसको किसी मुसीबत में मुब्तला करता है, उसको आजमा के देखता है ना, जाहिर है टेस्ट नहीं होगा पता कैसे चलेगा, ये उसके ऊपर आजमाइश आती है। जैसे हज़रत बिलाल को जब टॉर्चर किया जाता था तो लोग कहते थे कि कह दो तुम इनके बुतों का नाम ले दो, तुम्हें तुम्हारी जान छोड़ दें, क्या फरमाते थे कि जब तुम कोई बर्तन खरीदते हो बाजार से तो उसको ठोक बजा के देखते हो ना कि पक्का है कि नहीं है, उस जमाने में वो मिट्टी के बर्तन होते थे, ये पक्का है कि नहीं, इसको ठोक ठोक के देखते हैं, तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा कि मैं असली हूं कि नहीं। तो कितनी हमारे अंदर रजा होती है, ये बुलंद मकाम है, बहुत ऊपर का मकाम है, अल्लाह की कजा के ऊपर उसकी तकदीर पे राजी हो जाना, तो ये मकाम ऐसे ही नहीं मिलते। तो ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा पा लेता है, वो तो समझ ले दुनिया की जन्नत में रहता है, क्योंकि वो हर हाल में ही राजी है। लोग परेशान हैं, पैसा कमा के भी परेशान, करियर बना के भी परेशान, बड़े बड़े घर लेके भी उनके टेंशन नहीं खत्म होती, उनके डिप्रेशन नहीं खत्म होते, वो राजी हैं। तो सच्ची मोहब्बत जो है ना, या दोस्ती इंसान की, या मोहब्बत कह लें अल्लाह के साथ, वो ये है कि जो महबूब की तरफ से पहुंचे उसको भी ये सोचे कि ये भी एक बहाना है, महबूब ने मुझे याद तो रखा। इस तरह से लोग देखते हैं जो इस मकाम पे पहुंचते हैं कि महबूब ने मुझे याद तो किया ना, चलो कोई मुसीबत भेज के याद किया, मैं उसकी याद में तो हूं ना। अल्लाह हू अकबर। फिर वो इंसान ऐसा हो जाता है कि उसको पता चलने लगता है, अल्लाह ताला जब उससे मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह की तरफ उसके दिल में कशिश पैदा होती है, वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है, उसके कामों की तरफ, उसके जिक्र की तरफ, खैर की तरफ, नेकियों की तरफ, भलाइयों की तरफ। तो बहुत सारी और भी अलामत हैं कि कैसे पता चले। अब इतना वक्त नहीं है ना कि हम इस चीज को डिस्कस करें। अब बहुत सारी हमें अलामत कुरान पाक से भी पता चलती है कि कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला किससे मोहब्बत कर रहा है। जाहिर है कोई अब आके तो वही तो उतरनी नहीं है जिसने आके पता चले कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है। और जो अलामत है वो आप कुरान पाक में देख सकते हैं कि अल्लाह ताला इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, युहिब्बुल मुतहिरीन, युहिब्बुत तवाबीन, युहिब्बुस साबिरीन, कितने ही बातें बताई गई है ना हमें। अल्लाह मुकसितीन, हमने वो पढ़ा था, इंसाफ करने वालों से, तवक्कुल करने वालों से, सबर करने वालों से, एहसान करने वालों से, तकवा करने वालों, तकवा वालों से, पाक साफ रहने वालों से, तौबा करने वालों से, इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अपने अंदर वो सिफात हम पैदा करेंगे अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि देखें, हम ये तो कह सकते हैं हमें अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, हम तो इस काबिल नहीं है। हम ये मांग सकते हैं अल्लाह हमें इस काबिल बना कि तू हमसे मोहब्बत करे, क्योंकि हमारे अंदर ये सिफात कहाँ है। ना सबर है, ना उस तरह का तकवा है, ना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है, ना एहसान की रविश है। एहसान भी क्या होता है, कोई नेकी कर रहा है तो आप उससे बढ़ के नेकी उसके साथ करें, कोई बुराई कर रहा है तो उसका जवाब भी नेकी के साथ दें, ये होता है एहसान का दर्जा। हमारे अंदर कहाँ इतने हौसले हैं कि हम इस तरह इतने हो जाएं कि भाई अच्छा तुम हमारे साथ बुरा भी करोगे तो तब तो भी हम तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, और जो अच्छा करे उसको उतना ही जवाब देते हैं, उसे बढ़ के नहीं देते। जिस जो अच्छा नहीं करे उसके साथ भी अच्छा, जो अच्छा करे उसके साथ उससे ज्यादा अच्छा, ये होता है फिर एहसान। किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाना, ये होता है एहसान। किसी के लिए भलाई की सिफारिश कर देना, ये होता है एहसान। किसी का बिगड़ा हुआ काम बना देना, ये होता है एहसान। किसी को कर्जा दिया हुआ, कर्जे की वसूली में आसानी कर देना कि वो मजबूर है, ये होता है एहसान। किसी की जरूरत को अपनी जरूरत पे तरजीह दे देना, ये होता है एहसान। ये कहां हमसे होते हैं। तौबा भी वो वाली है कि जो तौबा इस्तगफार की तस्बीहां ही हैं और कुछ भी नहीं। तो बात तो ये है कि सिर्फ जुबान के ऊपर मोहब्बत के दावे ना हो, बल्कि जब फरिश्ते जान निकालने के लिए आए तो इस दिल के ऊपर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा हो, तब पता चले कि हाँ ये सच्चा मुहिब है, मुहिब मोहब्बत करने वाला। तो सच्चे मुहिब बन के दिखाए ना, ये दावों को छोड़े, बातों को छोड़े। बातें तो मुनाफिकीन भी बहुत करते थे, बातों उसमें कुछ नहीं रखा। तो अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को पहले ला के उसको ऑनर दिया कि ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का मोहब्बत करना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों को ऑनर बख्शा है, एजाज दिया कि देखो जी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह से तो बड़ी मखलूक मोहब्बत करती होगी, चरिंद परिंद क्या क्या चीजें अल्लाह से मोहब्बत करने वाली है, अल्लाह की तस्बीह करने वाली है। अल्लाह किसी का नाम ले ले कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, वो बड़ी बात है। अल्लाह हू अकबर। युहिब्बूनहू, वो मोहब्बत करते होंगे उससे, अल्लाह ऐसी कौम लाएगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, नरम होंगे वो मोमिनों पे, यानी ये ऐसे लोग हैं अल्लाह के जो महबूब हैं, वो ऐसे हैं जो ईमान वालों के साथ नरम है, नरम दिल, नरम बात करने वाले, नरम मामला करने वाले, शफीक, मेहरबान। और आपको पता है ना कि कौन है जिसके ऊपर जहन्नुम को अल्लाह ने हराम कर दिया, और जहन्नुम उस पे हराम, वो जहन्नुम पे हराम, जो करीब है लोगों के करीब, नरम दिल है, आजिज मिजाज है, इजी गोइंग है वो। तो अब ये सिफात जिस इंसान के अंदर हो, वो है कि जो अदिल्लतिन अलल मुमिनीन। हमारा हाल क्या होता है, हम ईमान वालों के साथ जो मुसलमान है उनके साथ सख्त होते हैं, और जो काफिर हैं उनको देखते ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत और अखलाक के साथ बोलते हैं, और जो ही कोई अपने को मुसलमान आ जाएंगे, ओ चेहरा तन जाएगा और आवाज में भी एक वो हो जाएगा। हम सोचते हैं ना कि शायद मैं बड़ी बेगम साहबा तब बनूंगी जिस वक्त मैं बड़ी रोबदार हूँ और मैं किसी को खातिर में ही ना लाऊं, कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, तो जब मैं ऐसे बनूंगी ना तो फिर ही मैं कोई बड़ी शान वाली, मेरी शान बढ़ेगी। लगे ऐसे नहीं है, वो तो अदिल्लतिन अलल मुमिनीन है। लेकिन कैसे, हजरत उमर का वाकया याद आता है ना, कि एक दिन चिलचिलाती धूप है, सख्त गर्मी, दोपहर का वक्त, भागे जा रहे हैं, किसी ने कहा आप किधर जा रहे हैं अमीर उल मोमिनीन? तो कहते हैं कि बैतुल माल का एक ऊंट दौड़ गया तो उसको लेने जा रहा। तो वो कहने लगे आप किसी गुलाम को भेज देते हैं। कहते उमर से ज्यादा कौन बड़ा गुलाम होगा, इतनी आजिज मिजाजी। जब आजिज मिजाजी होती है ना तब नरमी आती है, जब अंदर तकब्बुर होता है तो अकड़ आती है उससे। तो वो नरम इसलिए कि उनके अंदर आजी है, और जो खुद कोई बड़ी चीज समझता है वो नरम नहीं हो सकता, फिर वो सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मुर्दे जो होते हैं ना वो सख्त हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं, जो जिंदा होता है वो तो नरम होता है। तो वाकई जिनके दिल जिंदा हो वो नरम होते हैं, और जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं वो अकड़े होते हैं। अकड़े भी नहीं रहना, इसमें कोई शान नहीं किसी की बढ़ती। हाँ आपकी बेगम साहबा कहलाने में, और लोग आपके सामने इस तरह थर थर कांपे, और लोग आपको बड़ी चीजें समझें, और वो ये इनकी क्वालिटी नहीं है, औरों की हो सकती है मगर इनकी नहीं है जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है। अगर ऐसे बनना है ना तो नरम मिजाज बने, लोगों के लिए शफीक और मेहरबान बने। कोई आपको पावर हाथ में आ जाए ना तो अपने आप को बड़ी चीज समझ के लोगों को काटने को ना दौड़े। रवैये, जो तुरशी वाली रवैये है इनको छोड़ दें, इस जुबान की काट को छोड़ दीजिए, नरमी लाएं जुबान में। देखिए अल्लाह ने इसको कैसी चीज बनाया, नरम बनाया ना इसको, तभी तो ये मुड़ती है, घूमती है, ऊपर नीचे जाती आती है। अगर अल्लाह इसको अकड़ी हुई चीज बना देता तो ये अपना काम ना कर सकती। आपको अल्लाह ने जो जुबान दी है उसको ही नरम चीज बनाया, तो इसे नरम बात निकाली। नरमी जिसके पास होती है उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर दे दी, और नरमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काम होते हैं जो सख्ती से नहीं होते। तो ये नरम है, और खास तौर पे नरम किनके साथ, ईमान वालों के साथ नरम, इसलिए कि उनके साथ उनको आपस में अखुवत का रिश्ता है, जो ईमान का रिश्ता है वो उनको महसूस होता है। और आपको वो हदीस भी पता होगी कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, यानी नरम। ये चिड़ियों के दिल कैसे हैं, नरम, वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। सख्त और तुरशुरूर हो लोग, ये तो जन्नत का भी माहौल खराब कर देंगे, जो यहाँ पे बदतमीजियां नहीं छोड़ते, जो यहाँ पे किसी का लिहाज नहीं करते, वो सोचते हम जुबानें चलाएंगे ना तो भी इस तरह से दूसरों को देखो, मेरे अभी ठीक करती हूँ उसको, ऐसी जुबान चलाएंगे कि दूसरों को डरा के रखते हैं, सोचते हैं इस तरह हमारे काम बनते हैं, इस तरह मैं काम निकलवाती हूँ अपने, मैं देखती हूँ फिर मेरे सामने बोलेगी कैसे ये। तो ये आपकी कोई बड़ी बढ़ाई नहीं है इसके अंदर। तो सहाबा ऐसे थे, इतने नरम थे। और किसके लिए सख्त थे? इज्जतिन अलल काफिरीन, काफिरों के लिए सख्त थे। अब ये मतलब नहीं कि काफिर को सामने आए तो आप उसके साथ तर तर शुरू हो जाएं और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दें, ये नहीं। मतलब है कि उनके साथ, उनके आगे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं थे, उनके आगे लचक दिखाने वाले नहीं थे कि नरम पड़ जाए जैसे आप कहते हैं, और आपको नहीं पसंद कि हम नमाज पढ़े तो नहीं पढ़ते हम नमाज, जैसे आपको पसंद हो। नहीं, ऐसे नहीं थे। आपको पता ना हजरत मुसअब बिन उमैर कितने वो लाडों में पले हुए थे, और उनकी माँ बहुत अमीर औरत थी, तो उनको इम्पोर्टेड खुशबू, इम्पोर्टेड कपड़े उस वक्त उस जमाने में उनके लिए आते थे जो वो पहनते थे। मुसअब बिन उमैर जिस गली से गुजर जाते थे तो लोगों को पता चलता था यहाँ से मुसअब गुजरा है। ऐसे थे वो सहाबी, इतने नाजो नाम में पाला था उनको उनकी माँ ने। और जिस वक्त मुसलमान हुए सब लग्जरीज उनसे ले ली गई, सब लग्जरीज। तो उनका ये हाल था जिस वक्त बदर हुई और बदर में कैदी आए, तो इनके भाई को एक अंसारी ने पकड़ा था, तो उसने चेन किया हुआ था, तो वहां से गुजरे तो अंसारी से कहते हैं कि इसको मजबूती से बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, तुम्हें अच्छा इसका फिदिया देगी। मैंने ये नहीं कहा कि हाय मेरे भाई, हाय तेरा क्या हाल हो गया, इतने अरसे बाद तू मिला, मैं तो अभी तेरी जाके सिफारिश करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो मेरी जरूर सिफारिश सुनेंगे, मैं तुझे अभी छोड़ाता हूँ, तू मेरा भाई है, मुझे मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब उनके भाई कौन है? वो अंसारी। ये भाई नहीं है, क्यों? इसलिए कि ये कुफर के ऊपर है, ईमान नहीं लेकर आया। उनको लिए ईमान वाला रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा था। हजरत साद बिन अबी वक्कास को देखें, माँ मुशरिका थी, तो फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ इतनी मोहब्बत करता था और इतना उनका फरमा बरदार था, जब मुसलमान हुआ तो माँ कहने लगी असाद ये तूने कौन सा नया दीन ले ली अपना लिया, इस दीन को छोड़ दे वरना मैं भूख हड़ताल करके मर जाऊंगी, इसके बाद लोग तुझे कहेंगे तू माँ का कातिल, तुझे ये कह कह के शर्म दिलाया करेंगे सारी दुनिया के अंदर, यानी तू बदनाम हो गया कि ये है जो माँ का कातिल जा रहा है। तो मैंने अर्ज किया माँ ऐसा ना कर, मैं ऐसी बातों से अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन और रात तो उसने खाना छोड़ दिया और अगले दिन फिर मुझे मजबूर करने लगी। तो कहते हैं मैंने जब ये देखा तो मैंने साफ कह दिया है माँ सुन, अल्लाह की कसम है अगर तू 100 जाने रखती हो और एक एक जान करके मेरे सामने तेरी एक एक जान निकल जाए तब भी मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, अब तेरी मर्जी है तू खाना खा या ना खा। जब उसने ये बात सुनी तो फिर उसने खा लिया, कि मैं तो नहीं मरती ना इसके पीछे। फिर देख लें आपके हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो उस वक्त क्या कहते हैं कि जंग में अपने बाप से कहते हैं कि जंग में कई दफा आप मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। तो बाप ने आगे से क्या जवाब दिया कि बेटा अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तुझे ना छोड़ता, क्योंकि उनकी मोहब्बतें, उनकी जीना मरना, उनकी नफरत, उनके दुश्मनी, उनका बोझ सिर्फ उसकी बुनियाद दीन था, ईमान था, कुछ और नहीं था। यानी इंसान के लिए एक वो लोग थे जिनके लिए ईमान सबसे बड़ी चीज है, ना कबीला, ना रिश्ता, ना दोस्तियां, और यही मयार होना चाहिए कि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्जु लिल्लाह, मेरी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और मेरी नफरत भी, बुग्ज भी अल्लाह के, किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मयार अपने ताल्लुकात का उन्होंने ये रखा हुआ था। तो क्यों ना अल्लाह को उनसे मोहब्बत हो? फिर हम तो कहते हैं अल्लाह का हुक्म टूटे तो टूटे, मेरे बच्चे का दिल ना टूट जाए। आई मेरे बच्चे का दिल कैसे टूट जाएगा, ये कैसे उसकी ख्वाहिश की कुर्बानी कैसे दूं? अल्लाह के दीन की कुर्बानी देने का कोई बात नहीं, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, बच्चा नहीं बाद में मानेगा। अल्लाह अकबर। देखें अब अदिल्लत अलमुमिनीन से एक और बात याद आई कि हजरत उमर के दरवाजे पर सुहेल बिन अमर थे, हारिस बिन हशाम, अबू सुफियान और कुरैश के बड़े बड़े मोअज्जज़ लोग थे, मुलाकात के लिए वो इंतजार में थे। इतने में सुहेब रूमी आ गए, हजरत बिलाल आ गए और बाज वो गुलाम जो बदर में शरीक हुए थे वो मुलाकात के लिए आ गए। हजरत उमर ने अपने दरबान को कह के हजरत बिलाल और उनके साथियों को फौरन मुलाकात के लिए अंदर बुलवा लिया। तो अबू सुफियान इस बात से बड़े गुस्से में आए कि इन गुलामों को तो मुलाकात के लिए फौरन बुला लिया और हम इंतजार में बैठे हैं, तो हमारी तरफ अभी तक नहीं उन्होंने तवज्जो दी। वो अभी इस किस्म की गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सुहेल बिन अमर, जो अपने वक्त के बहुत दाना थे, बड़े समझदार आदमी थे, वो आके कहने लगे, है कौम अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे चेहरे पे गुस्से और नाराजगी की अलामत देखी है। देखो गुस्सा उमर बिन खत्ताब पे ना करो, अपने आप पे करो। कौम को हक की दावत दी गई, तुम्हें भी दी गई, इन कमजोर लोगों ने उस दावत को फौरन कबूल कर लिया, मगर तुमने ताखीर की और उनके मुकाबले में पीछे रह गए। अब जिस फजीलत यानी ईमान की वजह से ये फुकरा तुम लोगों पर सबकत कर चुके हैं, इसकी वजह से आज तुम इस दरवाजे पर पहले दाखिल होने से रह गए। ठीक है, तो जो फजीलत उनको मिली ना, उसकी वजह से वो आज आगे तुमसे चले गए। और फिर फरमाया, इस फजीलत के जरिए ये फुकरा तुम पे जो सबकत ले जा चुके हैं ना, उसका तुमसे रह जाना तुम्हारे इस दरवाजे में दाखिल होने से ज्यादा अफसोसनाक होना चाहिए। तुम यानी इसमें मुकाबला कर रहे कि इनको पहले क्यों बुला लिया, हमें क्यों बाद में बुलाया, हम क्यों पीछे रह गए। तुम्हें ज्यादा अफसोस इस पे होना चाहिए कि ये तुमसे ईमान में सबकत ले गए। यहां पे बताने की बात ये है कि हजरत उमर जैसे, जिसको जिनको हम सोचते हैं कि वो बड़े सख्त थे, लेकिन वो कैसे ये गुलाम, ये वो लोग जो मुआशरे के कैसे पिसे हुए तबके समझे जाते थे। गुलाम आजाद भी हो जाता था ना, तो उसके बाद भी उसको वो मुआशरे में, उस मुआशरे में वो हैसियत नहीं दी जाती थी जो एक बॉर्न आजाद इंसान को मिलती थी। लेकिन ये लोग अदिल्लतिन अलल मुमिनीन थे, इतने नरम थे, इतने मुतवाजे थे, आजिज मिजाज थे मोमिनों के साथ। वो शेर है ना, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, बज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। के अपने प्यारे हैं, अपने ईमान वाले हैं तो रेशम की तरह नरम, और जहां पे काफिर हैं तो वहां पे फौलाद की तरह हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब कोई अपने दीन के ऊपर लचक नहीं है। दूसरे को भी पता होना चाहिए कि ये दीन के मामले में मेरी नहीं सुनेगा। समझ आई बात? आइज्जत इन अलग काफिरी, उनके ऊपर रोब होना चाहिए दीन का आपके। ये एक वो जगह है जहां पे ये कोई बात नहीं इसको बर्दाश्त कर सकेगा। तो हमें लोग कैसे याद करेंगे बताएं? एक होती ना, हर इंसान का एक इमेज होता है। सोचे मेरा और आपका इमेज क्या है? हम नरम है, सख्त हैं? किसके साथ नरम है और किसके साथ सख्त है? हमें कोई कह सकता है कि हम नरम मिजाज लोग हैं, इजी गोइंग है, या लोग हमसे डरते हैं, बात करने से डरते हैं, कॉल करने से डरते हैं, कहते हैं ये पीछे पड़ गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये खसूसियात लिखें और इनको अपने अंदर तलाश कीजिए। युहिब्बूनहू अदिल्लतिन अलल मुमिनीन आइज्जतिन अलल काफिरीन, लिखें इनके अंदर कि हाँ मेरे अंदर ये है या नहीं मेरे अंदर ये है, या किसी हद तक है, बस उतने ही नंबर मिलेंगे फिर आपको।